بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بات چل رہی تھی صبر پر. صبر ایک عظیم عبادت ہے. صبر کے معنی جو تھے روکنا، تو نفس کو روکنا، جیسے رمضان کے مہینے کو بھی شہر الصبر فرمایا، کھانے پینے سے روکنا، یہ صبر کی قسمیں تھی. پہلی صبر، صبر علی الطاعۃ، اللہ کے حکموں پر چلنے پر جو نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے اس پر جو صبر ہوتا ہے وہ صبر علی الطاعۃ. پھر دوسرا صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر جو مشقت ہوتی اس پر جو صبر کرتے ہیں. اور تیسرا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت اور پریشانی اوپر صبر. اور صبر ایک ایسی چیز ہے ہر وقت مطلوب ہے. ہر وقت چراغ بجھ جائے، لائٹ چلی جائے تو صبر کرو، انا للہ پڑھو اور صبر کرو. پھر فرما رہے تھے کہ رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں. رونے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کا اندر جو غبار اور جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا رونے میں کوئی حرج نہیں. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ جتنی غیر اختیاری چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا ہمیں مکلف نہیں بنایا. اگر غیر اختیاری طور پر رونا آ رہا ہے تو رو لو، غیر اختیاری طور پر. ہاں، جان بوجھ کر مصنوعی طور پر مت رو، بناوٹی نقلی رونا مت رو. اگر رونا آ رہا ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، تو رو لو. نہیں آ رہا ہے تو زبردستی بنانا، حتی الامکان کوشش کرو کہ رونے میں آواز بلند نہ ہو، رونے میں آواز بلند نہ ہو، خاموشی سے. آنسو ٹپک رہے ہو اور دل میں غم ہو یہ زیادہ بہتر ہے. اور بلا وجہ بین کا انداز نہ ہو، بین کا انداز نہ ہو جب تک تمہارے دل میں اس بات پر ایمان ہے، یعنی وضاحت، یعنی نوحا. ہاں، بین کا انداز نہ ہو، یعنی نوحا، شکایت کا انداز نہ ہو. جب تک تمہارے دل میں اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درست ہے اور میں اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو پھر رونے میں کوئی گاٹا نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اگر رو رہے ہیں تو اس میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان نہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے انتقال پر رو کر دکھایا، اپنے نواسے کے انتقال پر روئے اور فرمایا کہ یہ ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پیدا کی ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. ہاں، بیٹے کے انتقال پر تو فرمایا ان سے دل انسان کے دل میں پیدا کی ہے ایک رحمت، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. بہت سو کو شکایت ہوتی کہ ہمیں رونا نہیں آتا. رونا نہ آوے یہ بھی کوئی خراب علامت نہیں ہے. کسی کو آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہے. بعض لوگوں کی عقل میں بات نہیں آتی کہ صدمہ کا اظہار کرنا اور عقل سے اس فیصلے پر راضی ہونا، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی. یعنی ایک طرف جو غم پہنچا ہے اس کا اظہار کرنا، ایک طرف اس فیصلے پر راضی ہونا، تو یہ دو کیسے جمع ہو سکتا ہے. بھائی رونا تو اس لیے آ رہا ہے کہ راضی نہیں ہے. رونا تو اس لیے آ رہا ہے کہ ہم راضی نہیں، اس لیے رونا آ رہا ہے. تو بولے یہ دو کیسے کیسے کہ فیصلے پر راضی بھی رہو اور صدمے کا اظہار بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہے. تو ہمارے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی کہ جب ڈاکٹر سے آپریشن کرواتے ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوتا ہے، اب آپریشن کے وقت تکلیف بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ جسم کو کاٹا جا رہا ہے اور دوا لگانے کی وجہ سے पेशे उठ रही है, यानी दर्द उठ रहा है, लेकिन साथ में इस बात का इत्मीनान है कि डॉक्टर मेरा हमदर्द है, तकलीफ भी हो रही है और उस पर इत्मीनान भी है कि डॉक्टर मेरा हमदर्द है। तो देखो, बल्कि डॉक्टर की खुशामद करेगा और उसकी फीस भी देगा कि मेरा जल्दी से ऑपरेशन कर दो, इसलिए कि वो शख्स जानता है कि ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर जो तकलीफ मुझे दे रहा है उसी में मेरा फायदा है और उसके नतीजे में मुझे सेहत हासिल हो जाएगी। अब देखिए, तकलीफ भी हो रही है लेकिन साथ में इस तकलीफ पर राजी भी है, ये मिसाल है ना। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से जो मुसीबत आई है उस पर तकलीफ भी हो रही है और उस फैसले पर राजी भी है। तो ऐसा ही हुआ कि वो ऑपरेशन किया है तो तकलीफ भी हो रही है और फिर वो उस पर राजी भी है कि भाई जो डॉक्टर कर रहा है वो सही कर रहा है। तो अल्लाह ताला जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो अल्लाह है, तो अल्लाह ताला भी हमारा ऑपरेशन करते हैं ना। ये हालात क्या है, ये हालात अल्लाह की तरफ से एक ऑपरेशन है, तो हमें उस पर राजी भी है कि अल्लाह की तरफ से आया है और हमें तकलीफ भी हो रही है। तो ये है, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से जब तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ताला की मशीयत से पहुंचती है। अल्लाह ताला की तरफ से जो तकलीफ पहुंचती है ये अल्लाह के इरादे से पहुंचती है, बगैर उसके इरादे के नहीं पहुंचती, इसलिए कि कोई काम कायनात में ऐसा नहीं है जो उसकी मशीयत के बगैर हो जाए। एक दरख्त का पत्ता अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं गिरता, एक बारिश का कतरा भी अल्लाह के इरादे के बगैर नहीं गिरता। तो जो भी तकलीफ होती है अल्लाह के इरादे से आती है। बस उस वक्त इंसान ये सोचे कि मेरे हक में यही बेहतर था, हाँ, बस इसलिए कि कोई काम अच्छा, और ये सोचकर इस तकलीफ पर राजी हो जाए, बस उसी का नाम सब्र है। ये सोचकर इस तकलीफ पर राजी हो जाए कि अल्लाह की तरफ से है, उसी का नाम सब्र है, यानी अल्लाह ताला के हर फैसले पर और हर मशीयत पर राजी होना कि इसका हर फैसला बरहक है, ये याद रखो। अच्छा फैसला तो समझते कि हाँ ये तो अल्लाह ताला ने कर दिया, लेकिन बुरा फैसला आता है तो वहां पर जरा इंसान का दिमाग हट जाता है। तो ये समझो कि वल कदर खैरी ही व शर ही क्या है, मिनल्लाह ताला, क्या है भाई, तो खैर तो अल्लाह की तरफ से हम समझते हैं, लेकिन शर, अरे शर भी अल्लाह की तरफ से। अब इस पर एक सवाल होता है कि शर कैसे अल्लाह की तरफ हम करेंगे। हाँ, याद रखो शर भी अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन वो कैसे, हालांकि किया तो हमने है, फिर उसको अल्लाह की तरफ क्यों जोड़ देते हैं, कहीं नेकी को जोड़ देते हैं। याद रखो असल में अल्लाह ताला खालिक खैर है और खालिक शर है, खैर को अल्लाह ने बनाया और शर को अल्लाह ने बनाया। अब इंसान को इख्तियार दिया कि तुम खैर पर चलोगे तो मैं राजी होकर इनाम दूंगा, शर पर चलोगे मैं नाराज होकर सजा दूंगा। अब इस एतबार से ये इंसान पर है कि इंसान को इख्तियार दिया, वो अपने इख्तियार को गलत चलता है और अपने इख्तियार पर सही चलता है, और उस एतबार से कि अल्लाह ताला खाली के खैर है और खाली के शर है, इसलिए कहते हैं वल खैर वल कदर खैर ही व शर ही, यहां पर खल्क है, कस्ब नहीं है, कस्ब इंसान की तरफ से होता है कि इंसान मेहनत करता है, इरादा दिया अल्लाह ने थोड़ा सा, तो अब उसके अंदर अगर सही मानों में ईमान होगा तो वो अपने सारे इरादों को खैर की तरफ ले जाएगा। जी, तो खैर और शर, अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज न हो। आजकल पूरी उम्मत मुस्लिमा, एक था ना बीच में एक दौर आया था अफगानिस्तान पर हमले हो रहे थे, एक दौर गुजरा था, तो उसका बता रहे कि आजकल पूरी उम्मत मुस्लिमा उन पर हमले के सदमे से दो चार है कि उन पर रात दिन हमले हो रहे, मशरिक और मगरिब के तमाम मुसलमान इस सदमे की वजह से तकलीफ में है। तो बाज औकात इन तकालीफ और सदमात के मौके पर पांव फिसल जाते हैं और मायूसी की तरफ जाने लगते हैं, जबानों पर अल्लाह ताला की तकदीर का शिकवा आने लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और होता है आजकल जो हालात बिगड़ रहे हैं खुसूसन ईमान वालों के साथ में, तो फिर जबान पर एक शिकवा आने लगता है कि क्यों हमारे साथ हो रहा है। जब तो हम अल्लाह को मानते हैं, फिर क्यों अल्लाह की तरफ से हमारी मदद नहीं है। ये कमजोरों के पास ये सवाल हो रहा है। एक साहब जो अच्छे पक्के नमाजी मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने वाले, उन्होंने इस मौका पर जबान से अल्फाज कह दिए कि अल्लाह मियां ने अच्छा नहीं किया। अल्लाह या जुबिल्ला, देखो तो सही क्या कि अल्लाह मियां ने अच्छा नहीं किया। ये कलमा जबान से निकाल दिया, अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस किस्म के ख्याल से महफूज रखे। याद रखो, अजीब अजीब जुमले बकते हैं जब मुसलमानों पर कि अल्लाह ताला के हम जब कलमा पढ़े तो अल्लाह की मदद क्यों नहीं। अरे भाई, मदद है, अल्लाह की मदद है, याद रखना। अल्लाह ताला को मुसलमानों से मोहब्बत है, लेकिन मदद की शक्लें हमें पता नहीं है। हमारे सामने एक मदद की शक्ल का एक तस्वुर है, अगर उसके खिलाफ हो रहा है तो मदद नहीं है। तो तस्वुर हमने बांध दिया है ना, हमें वो उसके खिलाफ दिख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको मदद कहते हैं वो मदद तो हो रही है। तो जहां कहीं भी सवाल होता है ना, शिकायत पैदा होती है, वो तस्वुर जो करके हम काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें होता है। तो खैर, तो फरमाया ऐसे जुमले नहीं लाना चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करे। ख्याल महफूज रखे, अल्लाह ताला इस किस्म के ख्याल से हमें महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला के फैसले पर एतराज करना ये बड़ी खतरनाक चीज है। अरे तुम क्या, तुम्हारी अकल क्या, तुम क्या, तुम्हारी अकल क्या, तुम्हारी ख्वाहिशात क्या, तुम्हारी अकल महदूद, तुम्हारी ख्वाहिशात महदूद, तुम्हारे ख्यालात महदूद, तुम महदूद, तुम इस महदूद अकल और ख्वाहिशात के दायरे में रहकर सोचते हो। इस पूरी कायनात का निजाम उसके कब्जे कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसके कब्जे कुदरत में है। उसकी कुदरत कामिला, उसकी हिकमत बालिगा इस निजाम में कार फरमा है। अगर तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ताला इसका निजाम चलाते तो आसमान और जमीन का निजाम कभी का खत्म हो चुका होता, जो हम चाहते हैं ना, अगर ऐसे चलाते तो। अरे अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला, बड़ा हकीम, बड़ा फहीम, और पता नहीं अल्लाह ताला क्या हिकमत से चला रहे, वो अल्लाह ही जानते। हमारे अकल महदूद है, इसलिए हम जल्दी से वो जी क्या अल्लाह ताला तुम्हारी ख्वाहिशात के पाबंद है, अल्लाह ताला तुम्हारी ख्वाहिशात के पाबंद है, तुम्हारे आरजुओं के पाबंद है। तुम जैसा चाहो कायनात में वैसा होना चाहिए, यानी जो हमारे तस्वुर में होता है ना एक चीज, तो क्या अल्लाह ताला हमारे उस तस्वुर के और हमारी उन उम्मीदों के पाबंद है जैसा तुम चाहो वैसा होना चाहिए, या वो कादिर मुतलक है, वो हकीम मुतलक है और फैसला उसके हाथ में है, हिकमत उसकी चल रही है या तुम्हारी चल रही है, समझ उसकी है या तुम्हारी है, खुदाई उसकी, फैसला उसका, हिकमत उसकी, मसलहत उसकी, तुम्हारी समझ में आए तो ना आए तो उसका हुक्म बाला है, उसका फैसला बुलंद है, उसका फैसला बाला है। अगर किसी बात पर, किसी वाकये पर सदमा हुआ, चला हो गया सदमा, लेकिन साथ ही इस बात पर ईमान होना चाहिए, हुआ और चला भी गया, लेकिन साथ ही उस बात पर ईमान होना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह जल्ल शानू की मशीयत से हुआ। अल्लाह ताला کی مشیت سے ہوا، جو کچھ ہوا وہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوا، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. جی، بہت سی باتیں، بہت سے واقعات اللہ جل شانہ کی طرف سے تازیانہ ہوتے ہیں. تازیانہ، یہ واقعات تازیانہ مانی جگانے والے اور تنبی کرنے والے ہوتے، الارام ہوتے ہیں. جی، یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے، اپنے اندر دیکھ لے کہ ہماری طرز عمل میں کوئی غلطی تو نہیں تھی، اس غلطی کو متعین کرے اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو شکست. تاریخ اسلام میں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی اور آپ کے صحابہ کے عہد مبارک میں بھی، جہاں فتوحات بے شمار ہے وہاں شکستیں بھی ہے. یہاں فتوحات ہے تو وہاں شکست بھی ہے، ہزیمتیں بھی ہے. غزوہ احد کے موقع پر اگرچہ عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، شکست مانی کیا کہیں گے انگلش میں، ناکامی ہوئی یوں سمجھو، جہاں غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، دیکھو احد کے موقع پر تو کم تھی، لیکن غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور یہ شکست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوئی. کیوں؟ یہ دیکھو، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کیوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان شکستوں کا ذکر کر کے، ان ناکامیوں کا ذکر کر کے اس طرف متوجہ کیا تاکہ تمہارے دماغ میں بات نہ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے، تمہارے دماغ میں بات نہ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے تمہاری غلطیوں کی طرف توجہ کرائی. غزوہ احد کی شکست کے اسباب بھی بتائے اور غزوہ حنین کی شکست کے اسباب بھی بتائے کہ کیا اسباب تھے. لہذا ان اسباب کو سوچو اور آئندہ کے لیے پرہیز کرو. غزوہ احد میں کیا اسباب تھے؟ غزوہ احد میں شکست ہوئی، اطاعت میں کمی آ گئی. غزوہ حنین میں جو شکست ہوئی ہے اس میں ایک صحابہ کے ایک جماعت کو ایک ٹیلے پر رکھ دیا تھا، کہا جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں ہٹنا. جو لوگ جاتے حج میں احد پہاڑ دیکھنے کے لیے، وہیں پر ساتھ میں ایک ٹیلا بھی ہے جس پر لوگ برکتن چڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی برکت نہیں. تو وہاں پر صحابہ کرام کی جماعت کو رکھا تھا کہ ادھر سے ایک تھوڑا سا گیپ ہے، وہاں سے آنے کا چانس تھا مکہ کے مشرکین کا یا دشمنوں کا. تو آپ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں ہٹنا. تو شروع میں مسلمانوں کو جیت ہوئی، یہاں تک کہ کافر بھاگے، مسلمان مال غنیمت جو مال چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کو لٹنے میں لینے میں لگ گئے. وہ جماعت جو وہاں پر ٹھہرائی تھی انہوں نے سوچا کہ مقصد اصل میں فتح ہونا تھا، اور فتح اور کامیابی تو ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم بھی چلو مال غنیمت لینے کے لیے چلے جاتے. تو انہوں نے وہاں سے، امیر نے بھی بتایا ہمیں ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہ سب کے سب ہٹ گئے. اور وہاں سے دشمن نے کیا کیا، پھر وہ پیچھے سے اسی راستے سے آ کر مسلمان صحابہ کو گھیر دیا. تو صحابہ بیچ میں آ گئے، تو وہ اس میں سے آدھا لشکر آگے سے پلٹ کر پیچھے آیا اور آدھا سامنے آیا. تو بیچ میں صحابہ اور آگے اور پیچھے لشکر تھا دشمنوں کا. تو اس غلطی پر 70 صحابہ شہید ہو گئے. کامیابی ہونے کے بعد ناکامی مل گئی، تو وہ غلطی کیا تھی؟ اطاعت میں کمی آ گئی. हम उसको ये नहीं कहेंगे साहबा ने नाफरमानी की, कुछ कम ही आ गई, क्योंकि साहबा को अंदर गलतियां नहीं निकाल सकते, वो इश्तिहाद किया तो उसमें 70 साहबा शहीद हो गए। ये था गजवे ओहद का सबब, शिकस्त का सबब, कामयाबी के बाद शिकस्त। अब गजवे हुनैन के अंदर क्या हुआ? गजवे हुनैन के अंदर पहले शिकस्त है, बाद में कामयाबी मिली। यहां पहले कामयाबी है फिर शिकस्त है, वहां पर पहले शिकस्त, यहां पर तो वजह समझ में आ गई। वहां पर यह था कि गजवे हुनैन में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी और दुश्मन की कुछ 6,000 या 7,000 थी, याद नहीं है, लेकिन कम थी मुसलमानों से। तो क्या हुआ? तो उनके अंदर एक थोड़ा सा उज्ब आ गया कि जब हम थोड़े से थे, जब काफिर ज्यादा थे, हम कामयाब हो गए हैं, अब तो हम ज्यादा है और काफिर कम है, तो सवाल ही नहीं होता हम नाकाम हो। बस सवाल ही नहीं होता कि हम नाकाम हो, बस ये उज्ब जो आया तो अल्लाह ताला ने पहले शिकस्त दी कि देखो तुम करते हो या मैं करता हूं। अल्लाह ताला तो जान रहे हैं, यहां तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक वो तो ओहद के अंदर हुए थे। तो वो गजवे हुनैन में शिकस्त हुई, सहाबा इधर उधर भाग गए, परेशान हो गए कि क्या हो गया। फिर वो सब सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए और फिर सब एक बार होकर और अपने दिलों के अंदर तोबा इस्तगफार की, क्यों? क्यों दिलों ही के अंदर उन्होंने तोबा कर ली तो अल्लाह ताला ने फिर उस नाकामी को कामयाबी से बदल दिया। तो ये था उसकी वजह, इसलिए याद रखे। तो एक दिल के अंदर थोड़ा सा आया है कि हम तो क्यों नहीं, जैसे आज हमारे आजकल हमें भी, अरे भाई वो काम इतना छोटा छोटा काम हमने कर लिया तो बड़ा काम भी तो उसमें आराम से कर लेंगे, होता है दिलों में कि ये तो बहुत क्या है, हमने तो इससे भी छोटे छोटे। तो ये जो आता है ना कि ये बड़ा काम, अब ये थोड़ा सा अल्लाह को नापसंद आता, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे काम तू करता है या मैं करता हूं। तो अब हम जिसको हम सोच रहे थे, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी हम सोचते इतने इतने छोटे छोटे काम, ये तो कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े काम कर दिए, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको तो मैं भी कर दूंगा, और वो काम हो ही नहीं जाता, अल्लाह की मदद हट जाती है, दिमाग फेल हो जाता है, बोले नहीं समझ में आता क्यों। जब तौबा इस्तगफार करता अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, फिर अल्लाह तआला उसके दिल में डालते हैं, फिर वो काम होता है। तो इसलिए तो वो फरमा रहे कि देखो ये बताना चाहते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ हो रहा है, असल में इसको समझ। तो वो बताए देखो गजवे ओहद के अंदर शिकस्त हुई तो पहले कामयाबी फिर शिकस्त, और हुनैन में पहले नाकामी फिर कामयाबी। अब होता यह कि अपनी गलती की तरफ तो जहन जाता नहीं, बल्कि यह तय कर लिया है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई। जब कोई काम नहीं बनता है तो सोचो ना कहीं गलती तो हुई है, बल्कि हमारी गलती की तरफ ध्यान जाता ही नहीं, न गलती हो सकती है, और शिकवा अल्लाह ताला से है। इसलिए कि अब क्या होता है, फिर क्या कहते कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी नहीं, अब शिकायत हो जाती है, हालांकि गलती हमारी होती है। इसलिए जब हमारी गलती नहीं है तो अब क्या शिकायत होती है कि जब हमारी गलती नहीं है तो नऊज़ु बिल्ला अल्लाह मियां की गलती होगी। क्या समझते फिर कि हमने तो सब कुछ सही कर रहे और हम कामयाब, तो अल्लाह मियां की गलती, नऊज़ु बिल्ला। तो हम इंसान फिर क्या करता है, जब वो अपनी गलती नहीं देखेगा तो फिर अल्लाह की गलती निकालेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये सब फजूल ख्यालात शैतान दिल में पैदा करता है, ऐसे मौका पर सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह ताला की मशीयत के आगे सर झुकाना, अल्लाह ताला की मशीयत के आगे सर झुकाना, और ये कहना कि या अल्लाह हम आपके हर फैसले पर राजी हैं, चाहे सदमा हो चाहे गम हो चाहे तकलीफ हो, उसी का नाम क्या है भाई? सब्र है, उसी का नाम, उसी का नाम सब्र है। और दूसरा काम यह है कि अपना जायजा लो कि हमसे कहां कहां गलती हुई, फिर उन गलतियों को खुले दिल से एतराफ करना, खुले दिल से कबूल करो गलती को अगर हुई है तो कबूल करना चाहिए, उसमें शर्माना नहीं है, उसकी तावील नहीं करनी है, इधर उधर भागना नहीं है, दूसरी बहस में जाना नहीं है, कबूल कर लो क्या मेरे से गलती हुई, एतराफ करना, तावील और तवजी के चक्कर में न पड़ना और आइंदा इस गलती से परहेज करना। बस ऐसे मौका पर एक मुसलमान का तर्ज अमल ये होना चाहिए, तो ये मुसलमान का ये तर्ज अमल होना चाहिए कि गलती हमसे होती है और हम डाल देते हैं, गुस्से होते हैं अल्लाह के ऊपर, नऊज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ में इंसाफ का मामला नहीं किया और ये कैसी बात हो गई, ये सारा हमें ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहिए, खतरा हो जाता है कि अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, अल्लाह अकबर। नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को दुनिया बनाया है, ये जन्नत नहीं है। लिहाजा इस दुनिया में अच्छा भी पेश आएगा और बुरा भी पेश आएगा, नफा भी होगा नुकसान भी होगा, फतह भी होगी शिकस्त भी होगी, राहत भी मिलेगी तकलीफ भी पहुंचेगी। ये दुनिया वक्ती है, तो दुनिया में आने वाली हर चीज वक्ती है, राहत मिलेगी तो हमेशा की नहीं वक्ती, और मुसीबत मिलेगी तो हमेशा की नहीं वक्ती, इज्जत मिलेगी वक्ती, जिल्लत मिलेगी वक्ती, मैं इसको वक्ती कह करता हूं कि मिलेगी, यह दुनिया में सब चीज है, तो राहत भी है तकलीफ भी है और फतह भी है शिकस्त भी है। फिर ये तो दुनिया, तकलीफ न हो राहत ही राहत हो तकलीफ न हो फिर तो ये दुनिया नहीं, फिर तो जन्नत है, कि जहां राहत ही राहत तो वो जन्नत है, जहां तकलीफ ही तकलीफ वो जहन्नम है, और दुनिया जहां राहत भी है तकलीफ भी है, जहां इज्जत भी है जिल्लत भी है, जहां कामयाबी है शिकस्त भी है, जहां खुशहाली है वहां बदहाली भी है, सब कुछ है, तो ये दुनिया है। लिहाजा जन्नत जैसी राहत यहां किसी को नहीं मिल सकती, लिहाजा इस दुनिया में अच्छा और बुरा, सर्द और गर्म, मीठा और कड़वा, हर तरह का वाकया पेश आएगा। अगर इस तरह तुम मायूस होकर बैठ जाओगे फिर तो तुमने जिंदगी गुजार कैसे गुजारोगे, गुजार नहीं, मायूस नहीं होना, चलते रहना है, ठहरना नहीं है। कोई सूरज निकलने वाला है, इस कायनात में रात की तारीकी भी आती है, अंधेरा आता है, और रात के बाद दिन भी आता है, फिर सूरज निकलता है, गर्मी भी आती है, फिर सर्दी भी आती है। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया ऐसी ही बनाई है, जुल्मतों का जो बोल बाला है कोई सूरज निकलने वाला है, जुल्मतों का जो बोल बाला है तो कोई सूरज निकलने वाला है, यानी जब अंधेरी रात जब ज्यादा छा जाती है तो यूं समझो कि फिर दिन आने वाला है। इसी तरीके से दुनिया में जब बुरे हालात हर तरफ फैल जाते हैं तो यूं सोचो कि अच्छा दिन आने वाला है, कोई सूरज निकलने वाला है। सूरज तो जब ही निकलता है ना, जब तारीकी आती है, तारीकियों के बाद जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी की कदर भी होती है, अंधेरे के बाद जब सूरज आता है तो कितनी कदर होती है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा होता है कि अल्लाह तारीकी के बाद आपने हमें रोशनी भी अता फरमाई, तो जिल्लत के हालात के बाद तो समझ लो इज्जत के हालात भी आने वाले हैं। अब जो इज्जत मिलेगी तो इंसान खुश हो जाएगा, गरीबी के हालात के बाद मालदारी के हालात आने वाला है, तो गरीबी में जो जिंदगी गुजारी है तो फिर माल मिलेगा तो माल की कदर होगी, फिर फखर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दिया है, तो गोया के इसका एक न एक दिन अच्छा सूरज निकलेगा, जिल्लतों के बाद इज्जत का सूरज और गमी के बाद खुशी का सूरज जी, और गरीबी के बाद मालदारी का सूरज निकलने वाला है। आज दुनिया में जो फसादात है इंशाल्लाह उसके बाद राहत का भी सूरज निकलने वाला है, मायूस मत हो जाओ। लिहाजा कभी हिम्मत हार कर मत बैठो कि हालात में तारीकी हो गई है और मायूस होकर बैठ गए, अरे कहां की मायूसी, ये तो रात की तारीकी है, इसके बाद इंशाअल्लाह सुबह भी आने वाली है, सूरज भी निकलने वाला है, बस फिक्र इस बात की करो कि सुबह के निकलने में तुम्हारा भी हिस्सा लग जाए। जी सबर करो, क्यों कि जब जिल्लत के हालात आए तो सबर करो, अंधेरा आया तो सबर करो, सूरज निकलेगा लेकिन सबर करोगे तो ना, अब वहीं पर तुम शिकायत शुरू कर दो तो क्या होगा, इसलिए सबर करना पड़ता है। अब कितना सबर उसकी कोई मिकदार नहीं कि कब निकलेगा इज्जत का सूरज, माल का सूरज, खुशी का सूरज कब निकलेगा उसका कुछ पता नहीं, लेकिन सबर करो निकलेगा। बस फिक्र इस बात की करो कि सुबह के निकलने में तुम्हारा भी हिस्सा लग जाए, तुम अपनी गलतियों की तलाफी कर लो, नहीं है कि मायूस होकर बैठ जाओ, बल्कि अपना जायजा लेकर अज़्मो हिम्मत को ताजा कर लो और अपना सफर असरे नौ शुरू करो। जी इसलिए घबराओ मत, कैद खाने में तो तकलीफ ही तकलीफ होती है, तो पहले तो क्या समझो दुनिया क्या है भाई, जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया कैद खाना है। हदीस शरीफ में आया है हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, और जब ये कैद खाना है तो क्या कैद खाने में तुम्हें ऐशो आराम मिलेगा, जरा तस्वुर करो जरा कैद खाने का, जेल का, क्या वहां कोई ऐश आराम मिलेगा, कैद खाने में तो तकलीफ ही पहुंचती है, वहां तो खाने में तकलीफ, सोने में तकलीफ है कि नहीं, काम करने में तकलीफ और इधर उधर घूमने जाने में तकलीफ, कुछ भी नहीं, कोई राहत नहीं, वहां तकलीफ ही तकलीफ, सब कुछ मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है, सोने की जगह भी मिल रही है, सब कुछ, लेकिन तकलीफ ही तकलीफ है। तो वहां कैद खाने में तकलीफ ही पहुंचती है, तो इस दुनिया के अंदर असल तो तकलीफ है, इस दुनिया के अंदर देखो खाना मिल रहा है, आराम के लिए अल्लाह ने मकान भी दिया है, सवारी भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन तकलीफ तो होगी ना, कैद खाना है ना, तो तकलीफ है। अगर कभी ऐश आराम मिल जाए तो अल्लाह ताला की नेमत है जो इस्तेहकाक के बगैर आपको अता हो गई, हकदार नहीं थे लेकिन अल्लाह ने दे दी, वरना असलन तो दुनिया में तकलीफ ही मिलनी चाहिए, याद रखो। और जो दुनिया को तकलीफ के जहन में रखते हुए गुजारेगा फिर उसको शिकायत नहीं होगी। आज तो हमने दुनिया को जन्नत की तरह गुजारना चाहते हैं, तो अब वो चीज न मिलने की वजह से शिकायतें पैदा होती है, लेकिन ये समझे कि दुनिया है, ये कैद खाना है, यहां मुझे तकलीफ ही में रहना है, ये अगर दिमाग में बैठ गया है तो राहत पर शुक्र अदा होगी और तकलीफ पर सबर होगी, तस्वुर में अगर ये रखोगे तो, और तस्वुर में अगर हमने ऐश रख दिया है कि मेरा मकान ऐसा हो और मेरी गाड़ी ऐसा हो और मेरा ड्रेस ऐसा हो और मेरा बिजनेस ऐसा हो, अगर ये तस्वुर में रख दिया है और ऐसा नहीं हुआ तो शिकायत पैदा होगी, और अगर तस्वुर में तकलीफ ही तकलीफ रखी है और उसमें राहत मिल गई तो शुक्र पैदा होगा, यह है बात। और तकलीफ पर सबर पैदा होगी, इसलिए कि तकलीफ तो पहले से जहन में है कि तो होना ही होना है, तकलीफ हो रही तो असल के मुताबिक है तकलीफ, वरना असलन तो दुनिया में तकलीफ ही मिलनी चाहिए, अगर तकलीफ ही हो रही है तो ये असल के मुताबिक है, उस पर न तो मायूसी की बात है न ताज्जुब और परेशानी की बात है, बस अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहो, अपनी गलती को सोचो। बहरहाल सब्र का हासिल ये हुआ कि जब भी कोई तकलीफ पहुंचे, कोई सदमा आए, कोई परेशानी पेश आए, तो अल्लाह ताला के फैसले पर क्या करो, पहले राजी हो जाओ और राजी होकर अपनी गलती को सोचो, अगर गलती समझ में आए तो उसकी तलाफी कर लो, अगर समझ में ना आए तो किसी और से पूछ लो, वरना अल्लाह ताला से कहो कि अल्लाह जिस गलती की ये सजा है उस पर मुझे मुतनब्बे फरमा दे, मुझे बता दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए, इसलिए कि जो मुसीबत हमें पेश आई है वो किसी गलती का नतीजा है, इस गलती को माफ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमें सब्र की तीनों किस्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। وآخر دعوانا أن الحمد لله ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठा दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये करीम आका, हम आपके आजिज मिस्किन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह हमारी ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, अल्लाह हमारी ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा, अपने इश्क की आग हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह अपने इश्क की आग हमारे दिलों में पैदा फरमा, हमारे अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फरमा। ए अल्लाह हमारे हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत को पैदा फरमा। ए अल्लाह कयामत के दिन आपके पास हाजिर होने से पहले ए अल्लाह अपने दरबार में मकबूलियत नसीब फरमा। ए अल्लाह जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना, ए अल्लाह जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना, ए अल्लाह जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना, कयामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। ए अल्लाह व अम्मसाइल फला तनहर। ये अल्लाह हमारी मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, और आपने इरशाद फरमाया है व अम्मसाइल फला तनहर, सवाली को इनकार न करो, झिड़की न दो। ये अल्लाह जब हम कमजोरों को हुक्म है कि हम सवाली को इनकार न करें, हमें हुक्म है कि हम सवाली को इनकार न करें, ए मालिक हम भी तो आपके दर के सवाली हैं, हम भी तो आपसे मांग रहे हैं, ये अल्लाह आप भी इनकार न फरमाइए, ये अल्लाह आप भी इनकार न फरमाइए। अल्लाह आज की इस मजलिस में सबके गुनाहों को माफ कर दीजिए, अल्लाह आज की इस मजलिस में सबके गुनाहों को माफ कर दीजिए, ये अल्लाह आज की इस मजलिस में सबके गुनाहों को माफ कर दीजिए। अल्लाह आप ही ने इरशाद फरमाया है कि अच्छे बुरों के साथ अच्छाई का मामला करते हैं, अच्छे लोग बुरों के साथ अच्छाई का मामला करते हैं। ए मालिक हम तो बुरे हैं मगर आप तो अच्छे हैं, ए मालिक हम तो बुरे हैं मगर आप तो अच्छे हैं, हमारे साथ आप अच्छाई का मामला फरमा दीजिए, हमारे साथ आप अच्छाई का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर लीजिए, अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दीजिए, बरकत अता कर दीजिए। ए अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमाइए, और जो साहिब औलाद है उनके औलाद को नेकोकार बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं इनके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करना आसान फरमा। ए अल्लाह काम और कारोबार में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह घरों में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह जिल्लत से महफूज फरमा, ए अल्लाह जिल्लतों से महफूज फरमा, किल्लत से महफूज फरमा, इल्लत से महफूज फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा, के ईमान की हिफाजत फरमा, उनके माल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितना भी दीनी काम हो रहा है, काम के करने वालों की हिफाजत फरमा, काम की जगहों की हिफाजत फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, मकातिब कुरानिया की हिफाजत फरमा, उजड़ी हुई खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उजड़ी हुई खानकाहों को आबाद फरमा, और उन खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, उजड़ी हुई मसाजिद को आबाद फरमा। ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में चल रहे हैं, तमाम जमातों की चलत फिरत से उमूमी हिदायत के फैसले फरमा, जितने इज्तिमात हो रहे हो चुके होने वाले हैं, इन तमाम में सिफात कबूलियत पैदा फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा मुतवक्किल, इन सब की हाजतों को पूरा फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, व وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.